ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के संध्याकालीन सत्र को हम आरंभ करने जा रहे हैं। कहा जाता है गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता, इन तीनों का ही समन्वय है जो हमारी यात्रा को आनंदमय, सुखमय जीवन यात्रा बनाती है। ऐसे विशेष सम्मेलन में आप सभी हमारे बीच पधारे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ आज के इस सम्मेलन के मुख्य उद्घाटन समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय संतोष बहन जी, जो संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी से हैं, आपसे निवेदन है दीदी जी, आप आइए अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। ब्राता आरसी रतन चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी दिल्ली से हमारे बीच हैं, आपसे भी अनुरोध है। साथ साथ ब्राता आर के तिवारी चेयरमैन यूपीएसआरटी कारपोरेशन लखनऊ, आर के तिवारी चेयरमैन यूपीएसआरटी कारपोरेशन लखनऊ से, आदरणीय दिव्य प्रभा बहन वाइस चेयरपर्सन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग, ब्राता करुणा भाई जी चीफ ऑफ मल्टीमीडिया ब्रह्मा कुमारी, ब्राता सुरेश शर्मा जी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर TTW मना ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेवल विंग से, कहते हैं कि आसपास का वातावरण अच्छा हो, स्वच्छता पवित्रता के वाइब्रेशन हो, उसका हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे मनमनी कॉम्प्लेक्स में पवित्रता के सागर, शांति के सागर, परमपिता परमात्मा के वाइब्रेशंस को हम महसूस करें। चलें मन के भावों से, शुद्ध भावों से 2 मिनट के लिए हम परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। मुख के मौन के साथ साथ 2 मिनट मन के भी मौन को हम अपनाएंगे।
Oh.
कहा जाता है जिंदगी एक बहुमूल्य उपहार है, जिंदगी एक बहुमूल्य उपहार है, यात्रा जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। आज हमारे बीच ऐसी कुशल यात्रा कराने वाले ऐसे हमारे अतिथि महानुभाव उपस्थित हैं, जिन्होंने कई बार हमें यात्रा कराई है, लेकिन यात्रा के बीच हम सभी का अनुभव भी है, कई रास्ते में गड्ढे होते हैं, कई स्थानों पर काफी भीड़ होती है, ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने हम सभी को कुशल यात्रा कराई है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे अतिथियों का, महानुभावों का, आप सभी स्वयं हैं, लेकिन आप अपने लिए ही एक करतल ध्वनि से आपका पुनः स्वागत स्वागत स्वागत। एक आंतरिक संतुलन को भी हमें बनाए रखना पड़ता है और साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों एवं ऊंच विचारों का हम सभी कवच पहन करके रखें। आध्यात्मिकता के नियम आधार से जीवन की यात्रा को हम सरल, सरस और सुप्रवास किस प्रकार से निश्चित होता है, ऐसे इस हमारी गति, सुरक्षा और आध्यात्मिक सम्मेलन में हम सभी पधारे हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से कहूंगी कि हमारे मंचासीन महानुभावों का पुष्पगुच्छ एवं बैच के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। कहा जाता खिलते फूल जैसे लबों पर हंसी हो, खिलते फूल जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का ये सफर, जहां आप रहो वहां खुशी ही खुशी हो, जहां आप रहो वहां खुशी ही खुशी हो। दिल से आप सभी का बहने स्वागत कर रही हैं, दिल से हार्दिक स्वागत कर रही हैं, शुद्ध भावों से ये बहने आपका स्वागत कर रही हैं। आदर्श समाज में मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होते हैं, ऐसा समाज जो हेवन पैराडाइज या जिसे गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है, ऐसे समाज निर्माण करने वाले यातायात परिवहन से ही सारा भारत सारा जगत चलता है, ऐसे गति सुरक्षा आध्यात्मिकता सम्मेलन में पधारे अतिथियों का बहुत सुंदर गीत के द्वारा स्वागत करने के लिए आ रहा है मधुर वाणी ग्रुप। सतीश भाई और बानु भाई, आपसे निवेदन है कि हमारे अतिथियों का, हमारे महानुभावों का, हमारे रहनुमाओं का सुंदर गीत के द्वारा स्वागत करेंगे सतीश भाई एवं बानु भाई।
गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात, होगा सुंदर यातायात, होगा सुंदर यातायात। संपूर्ण भारतवर्ष आपके चरणों पे चलता है। ट्रांसपोर्ट बहुत प्रमुख विभाग है, इस विभाग के इस आयोजन पर आप सबको, सभी को बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें।
आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ, गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हृदय सबसे हर्षाए, परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए।
आपकी तालियां आपकी खुशी को तस्दीक करते हैं, बहुत खुशी का अवसर है।
गति में प्रगति होती है, गति में जग गतिमान है, गति से पहले सुरक्षा का हमको रखना ध्यान है। गति में प्रगति होती है, गति में जग गतिमान है, गति से पहले सुरक्षा का हमको रखना ध्यान है। आध्यात्मिकता में ही सुरक्षा सिर पे प्रभु का हाथ, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए, परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए। आध्यात्मिकता से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, बन जाते हैं कर्म योगी, कर्म कुशलता आती है। आध्यात्मिकता से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, बन जाते हैं कर्म योगी, कर्म कुशलता आती है। राजयोग का राज यही है ईश्वर की सौगात, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए, परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए। विकास जरूरी है, इस बिन प्रगति अधूरी है, प्रभु योजना बहुत बड़ी है, आपसे होनी पूरी है। आत्मविकास जरूरी है, इस बिन प्रगति अधूरी है, प्रभु योजना बहुत बड़ी है, आपसे होनी पूरी है। सेवा करते सुख देते हैं, लेते दुआ दिन रात, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए, परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ, गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ, निश्चित सफर सुहाना होगा और बनेगी बात। परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए, परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए, परिवहन वाले आए हृदय सबके हर्षाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई एवं बानु भाई का, बहुत सुंदर रीति से सुंदर और सरल शब्दों में गीत के द्वारा आपने हमारे अतिथियों का स्वागत किया, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, जज्बा परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर है जारी। कहते हैं मन तो सभी के पास है, मगर मनोबल किसी के पास होता है। ऐसे मनोबल रखने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता सुरेश भाई जी, जो ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग के हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने 49 वर्ष पूर्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आपने अपने मनोबल के द्वारा, आपकी विद्वता के द्वारा कई स्कूल कॉलेजों, कॉरपोरेटर ऑफिसों में या अन्य कई स्थानों पर ईश्वरीय संदेश देने के लिए आपने ईश्वरीय परिवार के सदस्यों को अपना यह परिचय दिया। ऐसे में सुरेश भाई से निवेदन करती हूँ कि सुरेश भाई आए और आप आज के इस सेमिनार का हम सभी को उद्देश्य बतलाएंगे।
ओम शांति। मेरे साथ प्यार से फिर से बोलिए ओम शांति। आप सब बहुत सुंदर गीत सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो रहे थे। मैं आपका चेहरा देख करके मैं भी बहुत खुश हो रहा था। आपकी खुशी इस हाल की एनर्जी के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहां से एक नया परिवर्तन निश्चित तौर पे शुरू होने वाला ही है। इसीलिए जो उद्देश्य की बात मुझे कही गई है कि इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला जीवन का उद्देश्य भी हमारा खुश होना ही है, खुश रहना ही है, है ना? तो वो खुशी बरकरार रहे और हम अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए, अपने घर परिवार में रहते हुए उस खुशी को न केवल अपने जीवन में बढ़ाते रहें, लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी हम खुशी बांटते रहें। ऐसा कुछ प्रयास यातायात वाले भी कर सकते हैं। हाँ, अब जो सुशोभित मंच है वो आपको बहुत कुछ सुनाने वाला है। आपकी खुशी में चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच हमारी श्रद्धेय संतोष दीदी जी हैं, हमारे बीच हमारे विंग के वाइस चेयरपर्सन दिव्य प्रभा बहन जी हैं, कुंती बहन जी जो अभी कोऑर्डिनेट कर रहे थे और हम सबको बुला करके आपके बीच कुछ कहने का मौका दे रही हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे ट्रांसपोर्ट विंग के, और मेहमानों में विशेष आप सबके प्रतिनिधि के रूप में दो मेहमान हमारे बीच मंच पर हैं, आदरणीय रमेश चंद्र रत्न जी जो दिल्ली से पधारे हैं और वो रेल परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर आए हैं। रेल परिवार भारत का सबसे बड़ा परिवार है पीएसयू के दृष्टिकोण से, तो उस बड़े परिवार के सदस्य के रूप में आप यहां पर उपस्थित हैं, तो इनके लिए आप तालियां भी बजा सकते हैं। और ये यहां पर क्यों आए हैं वो भी अपना उद्देश्य आपके बीच रखेंगे। और जन जन की सवारी जो कहलाती है वो है रोडवेज। तो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश वो है उत्तर प्रदेश, और उसके रोडवेज के प्रतिनिधि के रूप में कहिए या देश के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अपने कार्यकाल में ही नहीं कार्यकाल के बाद भी बहुत ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं, अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्यों में भी, उनकी कार्य क्षमता कहिए, उनके कार्य करने की शैली के लिए कहिए, आदरणीय आर के तिवारी जी। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे गति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता, तो तीनों का समन्वय क्या संभव है आम लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए, और विशेष तौर पर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की जब बात की जाए तब आध्यात्मिकता संभव लगती है क्या? जिस क्षेत्र को सबसे ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता हो, विशेष तौर पर अगर हम बात करें जो छोटे लेवल पर काम करने वाला है यातायात कर्मी, ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला, बस ट्रांसपोर्ट का चालक, उनको बहुत ही ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति बनी हुई है। इसीलिए ड्राइवर के लिए कहते हैं 36वीं कौम वाला है ये। सही कहा मैंने आपको, 36वीं कौम वाला कह के पुकारते ना, तो वो 36वीं कौम वाला 36 गुणों से संपन्न बन जाए। आध्यात्मिकता ऐसी जादुमयी कला है जिसके आधार पर जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है, और वो आमूल परिवर्तन क्या आपके कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा भी संभव है उसका अनुभव कराने के लिए। राजयोग का मेडिटेशन कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और उसके आधार पर यातायात क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, ये आपको अनुभव कराने के लिए हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। इस सेमिनार का उद्देश्य यही है कि यातायात क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन आए जो भारत दुर्घटना के क्षेत्र में सबसे आगे गिना जाता है वो सबसे पीछे जाने वाला बन जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है यातायात परिवहन प्रभाग के इस सेमिनार के माध्यम से। आपको अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाकर स्नेह संपन्न जीवन बनाना, शक्ति संपन्न जीवन बनाना, और उसके लिए जो चाहिए सत्यता की शक्ति, उससे भरपूर होना, वो आप कर सकें, उसी के लिए यहां पर आपके बीच जो आध्यात्मिक चर्चा या दूसरे सत्र जो आपने अपने बुकशीट में पढ़े भी होंगे प्रोग्राम शीट के अंदर। और विशेष तौर पे बात यह है कि हम यातायात परिवहन प्रभाग की ओर से अनेक स्थानों पर जाकर के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर घंटे दो घंटे के कार्यक्रम होते हैं, हम अपनी बात कहकर के आते हैं। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप आगे उसको फॉलो करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन जब तक उसको करने के लिए शक्ति नहीं है तब तक प्रैक्टिकल स्वरूप में हम अपना नहीं सकते हैं। तो आपको उस आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बनाकर के हम ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र विशेष में जितने भी लोगों को आप डील करते हैं, एज ए लीडर, एज ए वर्कफोर्स के हेड या ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में, तो आप उन लोगों तक ये आध्यात्मिक शक्ति पहुंचा सकें। इसीलिए सेफ्टी मैसेंजर शब्द तो आपने सुना है कई बार, लेकिन आज मैं एक नई चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है आप यहां से स्पिरिचुअल सेफ्टी मैसेंजर्स बन करके जाएं, स्पिरिचुअल सेफ्टी मैसेंजर्स बन करके जाएं, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता सेफ्टी संभव नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो कुछ नियम लगाए लागू किए जाते हैं, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति मन से उसे स्वीकार नहीं करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कविता बहन आपके साथ शेयर कर रही थी, हम इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें एक मोटरसाइकिल रैली, सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। तो गुवाहाटी में जब उसका लॉन्चिंग कार्यक्रम हो रहा था, तब वहां के मंत्री जी, यातायात मंत्री और परिवहन के कमिश्नर अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, और उस समय उन्होंने एक ड्राइव चलाई हुई थी हेलमेट के लिए विशेष तौर पे 2000 की पेनल्टी करके कि सभी को हेलमेट पहनना कंपलसरी करना ही है। उन्होंने डाटा के अनुसार ये कहा कि हमने 50% से ज्यादा कंप्लायंस को बढ़ाया है, जो 40% था वो 90% तक ले गए, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन 4 दिन का था, वो जब मैंने शेयर किया कि प्रैक्टिकली लोग या तो हेलमेट को टोपी की तरह रख करके चल रहे थे या बिना बक्कल बांधे पहने हुए चल रहे थे या जब कोई दिखता था तो पहनते थे और नहीं तो नहीं पहनते थे, हाथ में हैंडल में लेकर के चल रहे थे। तब मंत्री जी ने खुद कहा कि ये वास्तविकता है कि हमारे यहां जहां जहां नाके लगे हुए हैं उस क्षेत्र विशेष को लोगों को जानकारी के आधार पर देखा जाता है तो वहां हेलमेट लोग पहनते हैं, बाकी वहां से पार करते फिर उतार देते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हम नियमों को नियमों के रूप में देख करके लागू नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। और ये आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि आप अपने जीवन में खुश रहते हुए भी अपना कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमने जैसे शुरू में मैंने दो बार कहा कि एक रेल परिवार के प्रतिनिधि और रोडवेज के प्रतिनिधि, तो हम ये मानते हैं कि विश्व एक परिवार है। जैसे आपके परिवार के 4 सदस्य हैं और उन 4 सदस्यों की सुरक्षा के बारे में आप चिंता करते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तब भी, गाड़ी से दूर चले गए होते हैं, घर से बाहर होते हैं तब भी, ठीक इसी प्रकार से भारत मेरा परिवार है, ये एक बृहत परिवार है, बड़ा परिवार है, इसके हर सदस्य की सुरक्षा के लिए मुझे प्रयास करना है, ऐसा संकल्प करके आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य अवश्य ही पूरा होगा। और आप सब, जैसे मैंने बीच में कहा भी कि 36वीं कौम वाले चालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो, उसका भी आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सदा ईश्वरीय शक्ति से भरपूर होने के लिए यहां जो भी सत्र सुनाए जाएंगे, आपके साथ कुछ शेयर किए जाएंगे, गेम्स होंगी, आपके एक्सरसाइजेस होंगी, सब में आप पूरे समय के लिए पार्टिसिपेट करें और इसका आनंद लें। खुश रहना आप सदा और मुस्कुराते रहना। अभी तो मुस्कुरा दीजिए कम से कम। खुश रहना आप सदा और मुस्कुराते रहना, शिव प्रभु से जोड़कर नाता, सदा आगे बढ़ते रहना, सदा आगे बढ़ते रहना, परमात्मा प्यार से भरपूर होकर सबको प्यार बांटते रहना, परमात्मा प्यार से भरपूर होकर सबको प्यार बांटते रहना, सफल हो आपकी जीवन यात्रा, सफल हो आपकी जीवन यात्रा, बस यही है हमारे दिल की कामना, यही है हमारे दिल की कामना।
सुरेश भाई ने बहुत सुंदर और अच्छी रीति से हम सभी को बताया कि यहाँ से हमें क्या बन करके जाना है। तो आपके लक्ष्य को आप जरूर स्मृति में रखेंगे। सुरेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच करुणा भाई पहुँच चुके हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे करुणा भाई का पुष्प गुच्छ एवं बैच के साथ अभिनंदन करें, अभिवादन करें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत सुंदर कार्यक्रम को हम पहले कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो प्रकाश की आवश्यकता है, दीप की आवश्यकता है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए हम पहले कैंडल लाइट करेंगे। कैंडल लाइट के लिए मैं बहनों से और भाइयों से निवेदन करती हूँ कि कैंडल लाइट आप ले आए। साथ साथ मैं कुछ सूचना भी दूंगी वे किस प्रकार से आप भाई बहन कुछ आएंगे और कैंडल लाइट करेंगे। हमारे बीच जो मध्य में कैंडल लाइट रखी जाएगी वहां पर जो मंच पर विराजमान हैं वे महानुभाव मध्य भाग के कैंडल लाइट के लिए आ जाएं। मध्य भाग में जो विराजमान हैं व्यासपीठ पर वे आएंगे। इसके पश्चात हमारे राइट लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कुछ मेहमान जिन्हें लाल रिबन दी गई है वे मेहमान आएंगे। और कुछ मैं और भी नाम कह रही हूँ, शायद उन्हें रिबन मिली है या नहीं मिली हो तो बहुत अच्छा। जिन्हें लाल रिबन मिली है वे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वहां पर आएंगे। इसके अलावा के जो नाम हैं, यतीन्द्र सिंह मेंबर पीएससी, ब्राता रामकिशन भाई जी, ब्राता सुरेंद्र भगत जी, सिस्टर बेबी चिंकी, ब्रदर लाल मणि जी SCY चेयरमैन, ब्राता ओम प्रकाश जी दिल्ली। इसके अलावा साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर के समस्त स्थानों के ट्रांसपोर्ट के भाई बहने यहाँ पहुंचे हैं। शांतिवन से, ज्ञान सरोवर से, पांडव भवन से, रेलवे स्टेशन पर जिन्होंने आपकी सेवाएं की यहाँ पहुंचाने के लिए, उन सभी से भी अनुरोध है कि वे भी आएंगे। जैसे दीपक भाई, सोमशेखर भाई, राजू भाई, जिनको हमने खास विशेष फोन के द्वारा निमंत्रण दिया वे भी मंच पर आएंगे। इसके अलावा मोतीलाल भाई दिल्ली से और हमारी बहनें जो सक्रिय ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग में सेवाएं करती हैं, सतीश बहन जी, रतन बहन जी, वो मेरे राइट हैंड साइड से आएंगे। सतीश बहन, रतन बहन, मोतीलाल भाई राइट हैंड साइड है, अर्चना बहन राइट हैंड साइड से। और आपको कैंडल दिया जा रहा है, आप अभी कोई भी नहीं जलाएंगे। जलाने से पूर्व हम तीन बार ओम शांति कहेंगे। हम सभी एक साथ खड़े रहें, एक साथ खड़े रह करके फिर हम कैंडल लाइट को करेंगे। जो हमारे भाई इधर आ जाए, अच्छा बीच में कोई भी जलाएंगे नहीं। नव जीवन की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बड़े सत्कार। शुभ संकल्पों के आप सभी भी मन के अंदर शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, नव जीवन बनाने का करें संकल्प। आप सबको भी आता होगा कि हम कैंडल लाइट करें तो आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की लाइट को कर सकते हैं।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं
ओ जला सकते।
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
अब सभी से निवेदन रहेगा कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मंचस्थ मेहमानों से भी निवेदन है कि वे जैसे जहां नीचे से आए थे वहां अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की, जब हम शुभ संकल्पों का दीप जला चुके हैं, तो ऐसे ही शुभ संकल्पों का दीप हमारी जीवन यात्रा में सदा सदा के लिए जलता रहे। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि स्नेह और प्यार की साक्षात प्रतिमा, ज्ञान एवं रस की पावन सरिता आपकी दृष्टि में ऊर्जा का आदित्य है, आपकी वाणी में अनुपम लालित्य है। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा उसके पास नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर के पास पहुंच जाती है। इसलिए करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले से बना करके रखता है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। ऐसी भावनाओं को रखने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सभी की स्नेही सन्मान्य आदरणीय संतोष दीदी जी, हम आप सभी करतल जाने से आज दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। दीदी जी, जैसा ही आपका नाम संतोष बहन है, वैसे ही आप निमित्त भी हैं, निमित्त भी रहती हैं, निर्माण भी रहती हैं और निर्मल स्वभाव भी आपका है, और आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, साथ साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मुंबई की आप क्षेत्रीय संचालिका, जिसे जोनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, आप चार जोन को कोऑर्डिनेट करती हैं। आप एक कुशल प्रवक्ता हैं, आपके नेतृत्व और आपके प्यार में इतने सारे सेवा केंद्रों का संचालन होता है। दीदी जी ने देश विदेश के कई स्थानों पर ईश्वरीय संदेश देने के लिए भ्रमण किया है, कई अवार्ड से आप सम्मानित हैं, आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त है। हम कहेंगे कि अब हम आशीर्वाद आपके मुखारविंद से चाहेंगे। दीदी जी हम सभी को ब्लेसिंग देंगे, आदरणीय डॉक्टर संतोष दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई और बहनों, हम सब एक ही पिता की संतान, आपस में बड़े गहरे रिश्ते वाले, आपस में भाई भाई और बहन भाई, आप सभी जिस बात का यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता, तीनों अलग अलग बातें हैं, परंतु तीनों बातों को जोड़ करके हम कैसा जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो वाहनों की गति है, स्पीड है, उसको कंट्रोल किया जावे, उसको अपने कंट्रोल में चलाया जावे और रास्ते पर चलने वाले या दूसरे जो भी वाहन है या खुद का वाहन है उससे उसको बचाया जाए। परंतु ये जो गति बढ़ जाती है, कंट्रोल छूट जाता है, इसका कारण वो वाहन नहीं होता है परंतु हमारे मन के संकल्प होते हैं। क्योंकि जब खाली रास्ता देखते हैं तो चालक जो है वो बहुत ही स्पीड से गाड़ियों को लेते हैं और वो स्पीड ही उनको क्या करती है, धोखा दे देती। इन बातों को तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, परंतु आज जो भी कुछ होता है उसका आधार है हमारा मन। स्थूल स्पीड को कंट्रोल करने की बात करते हैं, परंतु सबसे पहले हमें अपने मन को संकल्पों के कंट्रोल की जरूरत। अगर हम अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो किसी भी बात को कंट्रोल करने की ताकत हमारे अंदर नहीं आती है। और हम आज देख रहे हैं कि हरेक व्यक्ति अपने व्यर्थ संकल्प, फालतू विचार, इससे हैरान होता है। संकल्पों को स्टॉप करना चाहता है परंतु वो स्टॉप नहीं होते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है। और खुद भी अनुभव करते हैं कि जब वेस्ट संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तभी मन भी भारी हो जाता है, मत्था भी भारी हो जाता है। आज उसके कारण, मन दुरुस्त न होने के कारण तन की कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब गति की बात आती है, स्थूल गति के साथ साथ पहले हमें अपने मन की गति को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और वो मन के संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि बड़ी सालम चाहिए। हमारी बुद्धि का अगर उसके ऊपर कंट्रोल रहता है तो हम अपने मन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमेशा कहा जाता है, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो जगत को जीत सकता है, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो सब बातों को कंट्रोल कर सकता है। आज मन कंट्रोल न होने के कारण हम देखते हैं मुख से कुछ भी बोल देते हैं, कहते हैं मुझे बोलना नहीं था परंतु मेरे मुख से निकल गया। क्यों निकला मुंह से, जबकि मेरा मुंह है और मेरी इच्छा न होते हुए भी मन से मुख से निकल गया, इसका मतलब मेरा मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, देखना नहीं था परंतु मैंने देख दिया। आज कोई व्यक्ति समझो सामने वाला है, वो कोई भूल करता है, उसने भूल किया, कहते बहन जी वैसा मेरे को क्रोध नहीं आता है परंतु जब कोई झूठ बोलता है ना तो मेरे को बड़ा क्रोध आता है, मैं क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। उस स्पीड को तो, वाहन के स्पीड को तो कंट्रोल कर लेंगे परंतु मैं क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और फिर मैं अनाप शनाप कुछ भी बोल देता। अभी सामने वाले ने झूठ बोला, गलती किया, ठीक बात है, वो गलती करके छूट गया, परंतु हमने उसके ऊपर क्रोध किया। जिसने क्रोध किया उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसने क्रोध किया उसकी डायबिटीज बढ़ गई, जिसने क्रोध किया उसका हार्ट बीट बढ़ गया। गलती सामने वाले ने की और सजा मैंने भोगी। देखो कितना विचित्र है, वैसे तो जो गलती करता है उसको सजा होनी चाहिए या सामने वाले को सजा होनी चाहिए। तो आज हमारा कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल न होने के कारण हमारे को बिगर मतलब सजा भोगनी पड़ती है, अपनी स्थिति को खराब करना पड़ता है। इसीलिए क्या अनेक अनेक एक्सीडेंट होते हैं, क्या एक्सीडेंट होते हैं, आपसी संबंध खराब हो जाते। कहा जाता है पानी कितना भी खराब होने दो वो आपको पीने के काम में नहीं आएगा, पर आग बुझाने के काम में तो आ सकता है। उसी तरह से संबंध कैसे भी होने दो परंतु उन संबंधों को कभी भी विच्छेद मत करो। अगर उनको विच्छेद करते हैं समय पर वो ही संबंध आपको काम में आने वाले। तो वो जो शक्ति है वो हमें आध्यात्मिकता के द्वारा मिलती है, कि हम कैसे एक दो के साथ जुड़ के चले, एक दो के साथ स्नेह करके चले, एक दो के साथ प्यार से चले और एक दो को हम आगे बढ़ाते रहे। आज समझो कोई व्यक्ति आगे बढ़ती है, किसी की उन्नति हो रही है, टोटल आप देखेंगे दुनिया में यही चलता है, कोई आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने वाले को देख के दूसरे को जेलसी होती है, उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। आप वैसा भी देखो कोई व्यक्ति आगे है और हम उसको पीछे खींच रहे हैं, तो हम जब उसको पीछे खींचते हैं तो हमें कहाँ खड़ा रहना पड़ता है, उसके पीछे मुझे खड़ा रहना पड़ेगा तभी हम उसको पीछे खींचेंगे। वो व्यक्ति एक कदम पीछे आएगा तो मेरे को दो कदम पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे कौन हुआ, मैं हुआ या वो हुआ? आज आप कोई किसी को आगे बढ़ाते हैं तो जिसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आपको कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, उसके आगे खड़ा होना पड़ेगा, तो वो एक कदम आगे बढ़ेगा, आप उसको खींच के दो कदम आगे लाए। इसीलिए कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। आप सर्व का हमेशा कल्याण सोचते रहो, सर्व का भला सोचते रहो तो आपका कल्याण होता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी बुद्धि को, एकाग्रता को ठीक करने की आवश्यकता है। जितनी जितनी ईश्वरीय याद में हम रहते हैं, आध्यात्मिकता को समझते हैं, समझ के हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं उठाते। आज हम देखते हैं, आज जो महंगाई का जमाना चला है तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, ध्यान रखता है खास कि कम से कम खर्चा हो, परंतु जब सोचना होता है तभी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सोचता। तो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमारे इतने संकल्प वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संकल्प, श्वास और समय ये बहुत बड़ा खजाना है, उसको वेस्ट करने के बजाय उसको सफल करने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम उसको सफल करते हैं तो हमारे को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, और इसीलिए हमें खुद के ऊपर इन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिकता जो है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारे को सिर्फ गति के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सिखाता है परंतु हमारी प्रगति करता है। तो जितनी जितनी हमारी प्रगति होती है आत्मा की, उस अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही हमारे संकल्प चलते हैं, और उन संकल्पों के आधार पर हमारे कर्म और हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते हैं। हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनने से इस संसार को हम श्रेष्ठ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तित होता है, पर संस्कार परिवर्तन के लिए हमारे को अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिकता जो है वो हमें श्रेष्ठ विचार करना सिखाती है, हमारे को समझ देती है जिन श्रेष्ठ विचारों के द्वारा हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। इसीलिए आप देखेंगे जब नई दुनिया थी, अगर आप पढ़ेंगे अपना भारत का इतिहास पढ़ेंगे, लक्ष्मी नारायण का राज था, ये भारत भूमि स्वर्ण भूमि थी, तभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कभी आपने कभी पढ़ा है किसी शास्त्र में भी देख लो कि फलाने देवता का एक्सीडेंट हुआ, कभी नहीं होता, क्योंकि वहां पर हर चीज क्या थी, फुल प्रूफ थी, उनके मन कंट्रोल में थे, उनकी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में थी। तो ये सब जो भी कुछ आज हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और उसको करने के लिए हमें राजयोग की शिक्षा चाहिए। तो इसीलिए जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हैं, अगर सचमुच हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है तो खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है। और बहुत करके यही कंप्लेन करते हैं, क्या करे बहन जी, टाइम ही नहीं मिलता है, यहाँ तक भी बोल देते मरने को भी हमारे को फुर्सत नहीं है। भाई जी, मरने के लिए कभी फुर्सत नहीं लगती है, जब ही मौत आता है तभी पूछता नहीं है तेरे को समय है या नहीं, तो हमें कभी भी जाना पड़े उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ तो जरूर तैयारी करनी चाहिए। आप देखेंगे अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं हम लोग तो यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती है, तो अगर हमारे को वापस जाना है तो ये स्थूल जो भी साधन है, जो भी वस्तु है, जो पदार्थ है, ये हमारे साथ में नहीं चलेंगे, परंतु इनको साथ में अगर आपको लेके जाना है तो इसको पुण्य में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जितना जितना हम अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, सेवाएं करते हैं, उतना उतना ये सारे जो स्थूल साधन है वो पुण्य में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो हमारे साथ में चलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में से कम एक घंटा अपनी आत्मोन्नति के लिए भी निकालने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आत्मा पावरफुल बन जाए, हमारा मन पावरफुल हो जावे, हमारी बुद्धि पावरफुल हो जावे, तो आप ही कंट्रोल आ जाएगा, एक्सीडेंट होना ही बंद हो जाएगा, फिर होगा ही नहीं बिगर एक्सीडेंट का, फिर हमारा भारत देश चलेगा, कोई हमारा खुद का ही एक्सीडेंट, मन का ही एक्सीडेंट नहीं होगा तो दूसरा क्या एक्सीडेंट होगा। इसीलिए यही हमारी शुभ भावना है, आप यहाँ पर आए बहुत खुशी की बात है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये प्रभु का घर सब बच्चों का घर है, तो आप लोग अपने घर में आए हैं, यहाँ से कोई ना कोई ऐसी बात साथ में लेके जाना जिससे हमेशा के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जावे। ओम शांति।
बहुत सुंदर दीदी ने हम सभी को समक्ष अपने मन के भाव रखे, बहुत अच्छी पॉइंट। तो लास्ट जिसमें आप सभी ने ताली भी बजाई, करेंसी ट्रांसफर, करेंसी चेंज करके ही हम विदेश में जाते हैं, दीदी ने बहुत अच्छा बताया। मैं समझती हूँ दीदी, यहाँ जो भी सब भाई बहने बैठे हैं, ये सब अपने नेगेटिव थॉट्स कहीं चलते भी होंगे, कोई भाव आता होगा, तो उस करेंसी को पॉजिटिव में चेंज करके जाएंगे, राइट? तो दीदी को हाथ हिला करके आप अपना अपना बता दें कि दीदी यहाँ हम करेंसी चेंज करके जा रहे हैं और अपने जीवन एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जीवन बना करके जाएंगे, यही हम लक्ष्य यहाँ से लेकर के जाएंगे। आपके जो बोल हैं उनको हम कायम अपने जीवन के अंदर पालन करने का लक्ष्य लेकर के जाएंगे। इस बात से सहमत हो तो पुनः एक बार दीदी को बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, अब और कदम को आगे बढ़ाते हुए जिनकी सोच में, मैं समझती कि दीदी जी को और प्रोग्राम में जाना है, इसलिए हम दीदी जी को यहाँ से नीचे और प्रोग्राम में जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहते हैं जिनकी सोच में आत्मसम्मान की महक है, जिनकी सोच में आत्मसम्मान की महक है, जिनके इरादों में हौसले की मिठास है, जिनकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उनकी पूरी जिंदगी महकता गुलाब है, उनकी पूरी जिंदगी महकता गुलाब है। आदरणीय दिव्या बहन, आप इस ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। आपने 1969 में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और 1970 में ही आपने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। आप उत्तर मुंबई क्षेत्र की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, कुशल संचालिका हैं, साथ साथ हमारे जो आध्यात्मिक गीत बनते हैं जो अभी भी आप योग में सुन भी रहे थे, ऐसे आपने 250 से भी ज्यादा सीडी और वीसीडी बनाई है और आपने एक टेलीफिल्म जिसे दिव्य ज्योति कहा जाता है, उस दिव्य ज्योति फिल्म को भी आपने बनाया है। आपने देश विदेश में कई स्थानों पर, जैसे मैं कहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सिंगापुर, बैंकॉक या अन्य स्थान भी हैं, दुबई, मस्कत, कई स्थानों पर जाकर के आपने ईश्वर संदेश देने का कार्य किया है। आपने साथ साथ एक अवार्ड भी प्राप्त किया लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी से, ममता अवार्ड, ममता पुरस्कार, तो आप उस पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आप एक मुख्य प्रमुख वक्ता भी हैं। आज से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए कुछ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। राजयोगिनी आदरणीय दिव्य प्रभा बहन,
ओम शांति। आज के हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आर सी रतन भाई, हमारे अन्य वक्ता आर के तिवारी जी, सुरेश भाई, करुणा भाई, कुंती बहन और आप सर्व इस सेमिनार में पधारे हुए भाई और बहनें, आज के विषय पर चर्चा हो रही है कि स्पीड, सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी। वर्तमान युग ये स्पीड का युग है। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में भी देखें, ऐसी ट्रेनें तैयार हो रही हैं कि कुछ घंटों में कहां से कहां पहुंचाती है। फ्लाइट की स्पीड, हर चीज, अब सोशल मीडिया देखते हैं, मैसेज जल्दी से पहुंचे, हर चीज स्पीड से चाहिए। अभी आत्माओं की धैर्यता वो समाप्त हुई है, इसलिए हर कार्य जल्दी से हो, अच्छा हो, इस सब की भावना और कामना है और बहुत अच्छी चीज भी है ये। लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान दें। हम स्वयं अपनी ही नहीं लेकिन औरों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए हम अपनी स्पीड को आगे बढ़ाएं। व्हीकल नहीं, आज के युग में मनुष्य अपनी लाइफ में भी जो प्रगति की स्पीड, चाहे बिजनेस हो, सत्ता हो, किसी भी क्षेत्र में आज व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वो भी स्पीड से। लेकिन उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे व्हीकल स्पीड से जाएं लेकिन और किसी व्हीकल के साथ टकराए नहीं, किसी की मौत न हो। लाइफ की प्रगति में भी ये सोचने की जरूरत है कि हमारी प्रगति के अंदर और किसी को पेन न हो। वहां एक्सीडेंट, रिलेशन में, संबंधों में, वहां भी एक्सीडेंट न हो। तो हमारी जीवन की प्रगति में भी स्पीड बढ़ाएं, लेकिन उसमें भी हमारे कर्तव्यों में हमें ध्यान रखने की सेफ्टी की जरूरत है। लेकिन इन सारी सेफ्टी का आधार, हमारी संतोष दीदी ने भी बताया कि सबसे पहले आध्यात्मिकता की इसलिए जरूरत है कि हमारे मन की सेफ्टी। मन हमारा व्यस्त विचारों से सेफ हो, नेगेटिव विचारों से सेफ हो, अशुभ भावनाओं से भी सेफ हो, क्योंकि वह न होने पर ही एक्सीडेंट नहीं होगा। यदि वो चीज मन में है तो कहां न कहां किसी न किसी व्यक्ति के संबंध में या उनके साथ व्यवहार में या हम जो भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, चाहे व्हीकल को यूज करते हो, तो उस पर हमारे मन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कार ड्राइव बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे हेवी व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर छोटे, लेकिन हर एक की ड्राइविंग अलग अलग है। और उसका कारण चलाने वाले व्यक्ति का मानस कैसा है, वो उसके अंदर उतावलापन है, जल्दीबाजी के संस्कार हैं, गुस्से वाला है, तो आप उसकी स्टीयरिंग की मूवमेंट देखना कैसे वो मूवमेंट करता है। मन का प्रभाव उस व्हीकल की स्टीयरिंग पर पड़ रहा है। अभी ब्रेक भी लगानी होती है, लेकिन गुस्से वाला व्यक्ति जो ब्रेक लगाएगा ना, आपको झटका लगेगा। एक ब्रेक लगती है लेकिन स्मूथली पहले से, जो बैठने वालों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब क्या है, एक्सेलेरेटर को यूज करेंगे, गियर चेंज करेंगे, उस समय पर भी आप देखिएगा कि कंपटीशन में कार चला रहे हैं और उस समय पर गियर चेंज करते हैं ना, उस समय पर उस ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति का फेस का एक चित्र, एक फोटो निकालिए, तो चेहरा कुछ अलग भावों को प्रकट करता है। कोई भी स्थूल व्हीकल की ही बात नहीं है, आप साधारण भी कोई कार्य करते हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं, उस सब पर हमारे मानसिक स्थिति का, अवस्था का प्रभाव पड़ता है। कोई गेट को बहुत आराम से, आवाज भी ना हो वैसे बंद करेगा, कोई है वो सारा हॉल हिल जाए ऐसे गेट बंद करेगा। मतलब मानस का हमारी हर एक्टिविटी पर प्रभाव है, इसलिए मन को शांत, स्टेबल, शीतल, धैर्यव्रत रखना ये बहुत जरूरी है। उससे ऑपोजिट जो बातें हैं उनसे मन को सेफ रखें, तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार और अन्य चीजों में एक्सीडेंट नहीं होंगे। फिर भी हम मनुष्य आत्माएं हैं और गवर्नमेंट का भी प्रयत्न रहता ही है, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, उसमें कम से कम एक्सीडेंट हो, आप सब भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। और एक्सीडेंट होने के बहुत सारे कॉज है जो हम जानते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट कम हो उसके लिए परमात्मा की एक बहुत बड़ी योजना है। और वो योजना जो अभी दीदी ने कहा, आने वाला युग, संस्कारों का परिवर्तन से वो संसार बदला हुआ होगा, ऐसे संस्कारी आत्माओं का एक संगठन होगा, जैसे विदेश में करेंसी की बात कही, ऐसे कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है नहीं, वीजा लेना पड़ता है। ऐसे सत्युगी जहां कोई एक्सीडेंट है ही नहीं, ऐसी दुनिया में रहने वालों के भी संस्कार का वीजा चाहिए। और ऐसे ही सब वहां एकत्रित होंगे तो फिर एक्सीडेंट का सवाल नहीं आता है। और ये प्लानिंग और ये पावर हम आत्माओं के पास नहीं, ऊपर वाले के पास, परमात्मा के पास वो प्लानिंग है। और थोड़े से समय में वो युग आना है जहां एक्सीडेंट शब्द ही नहीं सुनने में आएगा, लेकिन उस युग में जाने के लिए हमें अपनी तैयारी यहां पर करनी पड़ेगी। वहां का वीजा तो लेना पड़ेगा ना, वहां की परमिशन लगेगी, और उसी के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, न सिर्फ ट्रांसपोर्ट चाहे एक बिजनेसमैन है, चाहे एक जॉब करता हो व्यक्ति, एक घर को संभालने वाली व्यक्ति, इन सब को आध्यात्मिकता के बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा सा है। और इसीलिए आज मानव को ये होता है कि बहुत कुछ और सब कुछ होते हुए भी कुछ बाकी है, अभी कुछ अधूरापन है, और वो अधूरापन इस आध्यात्मिक संस्कारों को, हम आत्माओं को अपने अंदर भरना है। हम फोर व्हीलर टू व्हीलर को बहुत सेफ चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ इस शरीर रूपी व्हीकल की हर आत्मा ड्राइविंग करती है। सब ड्राइविंग जानते हो ना, चाहे व्हीकल न भी चलाते हो, शरीर को तो चला रहे हो ना, चलाने वाली कौन है, वो चेतना आत्मा है, और वो सही है, इस व्हीकल को भी सही चलाएं। नहीं तो देखो, व्हीकल न चलाते हो, रास्ते में चलते हो तो भी एक दूसरे का टक्कर होती है और एक्सीडेंट होता है ना, उसमें भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो इस व्हीकल को भी तो ठीक चलाएं। और उसके लिए आत्मा का सशक्त होना, सद्गुणी होना, समझदार होना, ये बहुत ही जरूरी है। और आगे के जो हमारे मेडिटेशन के और लेक्चर्स होंगे, कि जो हमारे अंदर उस शक्ति को भरने वाले होंगे, कि उस बल को हम यहाँ से लेके जाएंगे और रोड की, रेलवे की, प्लस हमारी जीवन यात्रा को हम बहुत ही सुखद बना सकें, ऐसी प्रेरणा को लेकर के हम सब जाएंगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर आदरणीय दिव्या बहन ने बताया, करेंसी से हम आगे पहुंचे वीजा तक पहुंच गए, लेकिन फिर टिकट भी चाहिए ना, वीजा भी हो जाती है, करेंसी चेंज हो जाती है, लेकिन टिकट भी चाहिए। अब टिकट कौन सी चाहिए, बहन ने बात करते करते शब्द तो यूज किए, लेकिन शायद आपका टिकट पर ध्यान नहीं गया, वो टिकट है हमारे शुभ विचारों की। जब तक हमारे शुभ विचारों की टिकट हमारे हाथ में नहीं है, तो करेंसी और वीजा लेने के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए आज से ही और अभी से ही हम हमारे मन के अंदर परिवर्तन करें, शुभ विचारों को अपनाएं, जो हमारे आदरणीय बहन ने हमें थोड़ी सी शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हम जरूर अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या बहन जी। अपने अनमोल विचारों को रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी, जिसके लिए ये कहूंगी कि हमारी सोच ही हमें और दूसरों के व्यवहार को निर्धारित करती है। जैसे विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसी जीवन, ऐसे भ्राता आर के तिवारी जी, चेयरमैन यूपीएसआरटी कॉरपोरेशन लखनऊ से हैं। आपका बहुत सुंदर बायोडाटा मेरे हाथ में है, लेकिन काफी लंबा होने के कारण कुछ एक बातें मैं सिर्फ रखूंगी कि महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड 2021 नॉर्दर्न रेलवे से आपको प्राप्त हुआ, गांधी पीस अवार्ड 2020 प्रधानमंत्री से अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान 2018 इंटरनेशनल अवार्ड आईटी स्वीडन से प्राप्त हुआ 2016। अवार्डों की लंबी लिस्ट है, एक अवार्ड ईश्वर से भी प्राप्त है जो आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसे जोरदार तालियां। भाई जी, आपका बहुत बड़ा बायोडाटा है, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके सुंदर विचारों को हम सभी के समक्ष शुभ भावना के रूप में प्रत्यक्ष करें। आर के तिवारी जी,
गति सुरक्षा अध्यात्म 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट के आज के अवसर पर यहां मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राजयोगिनी दिव्य प्रभा जी, भाई आरसी रतन जी, करुणा भाई जी, सुरेश शर्मा भाई जी, बहन कुंती बहन जी, यहां सभागार में उपस्थित सभी मेरे परम आदरणीय भाई व बहनों, मेरे परिवहन परिवार के पूरे देश के सभी प्रदेशों से आए हुए सभी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं परमपिता ब्रह्म कुमारी परिवार और विशेष रूप से इनकी परिवहन शाखा का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस बड़े पुनीत पावन कैंपस में आश्रम में आने का मौका दिया। अभी मैं 2 घंटे पहले ही यहां पर आया हूं और जब से मैं आया हूं तब से यहां की ऊर्जा, यहां का जो वातावरण है, जो अद्भुत ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ है, सकारात्मकता से भरा हुआ है, उससे मैं बड़ा परम आनंदित अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मेरा यहां इस आश्रम में भी और आबू रोड में भी प्रथम आगमन है। कई वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू को मैं ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम के रूप में ही जानता था और मेरे कई मित्र हैं जो स्वयं इस आश्रम से कई वर्षों से जुड़े हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि कभी वहां चल के जाया जाए। ये सौभाग्य मुझे आज मिला है कि मैं आज आश्रम में यहां आऊं और मुझे लगता है कि शायद माउंट आबू के आश्रम में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिलेगा। इसके लिए भी मैं ब्रह्म कुमारी जी के विश्वविद्यालय का, इस आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी राजयोगिनी संतोष दीदी जी ने और दिव्य विभा जी ने आध्यात्मिकता के बारे में और कैसे ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मनोभावनाओं के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक रहने के लिए, जीवन के प्रत्येक भाग में, जीवन के प्रत्येक कार्य में इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बताया है। मैं समझता हूं कि आध्यात्मिकता के बारे में जितना सुंदर विचार हमारी दोनों दीदियों ने व्यक्त किए हैं, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मैं तो प्रशासन में पिछले 37 वर्ष से हूं और कई अवसरों पर मुझे भी आध्यात्मिकता से साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। जब गति की बात होती है तो गति तो जीवन भी है और गति का अगर संतुलन ना हो तो वो जीवन को लेने वाला भी हो सकता है। गति के बारे में बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में होती हैं और पहली धारणा जो होती है वो हमारे विद्यालय जाने से होती है। जब बच्चे का प्रवेश होता है तो बच्चे को हमेशा ये बताया जाता है कि अगर तुम अधिक गति से काम करोगे تم جلدی اپنا کام کرو گے تو تم زیادہ بہتر ہو, چاہے ہوم ورک کرنے کی بات ہو, چاہے پرشنوں کا اتر جلدی دینے کی بات ہو. کلاس میں جو بچہ اپنا ہاتھ جلدی اٹھا دیتا ہے ٹیچر اسی کو کہتا ہے کہ سب سے اچھا بچہ ہمارا رہی. جب دوڑ ہوتی ہے, کھیل کود ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو بچہ سب سے تیز دوڑتا ہے وہی سمان کا پاتر ہوتا ہے, اور جو بچہ سب سے پیچھے ہوتا ہے اکثر ہم اس کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں. بچے آپس میں بھی کہتے ہیں, کئی بار شکشک بھی کہتے ہیں. شاید تبھی سے ہمارے دماغ میں ایک یہ بھاونا جنم لیتی ہے کہ تیز چلنا ہر پرستھتی میں ہر سمے بہتر ہے, اچھا ہے, ہماری یوگتا کی نشانی. کاش ہم اپنے ودیالوں میں یہ بتائیں کہ ہر سمے ہر دیش کال میں ہر پرستھتی میں تیز چلنا لابھکاری نہیں ہے, کبھی کبھی دھیمے چلنا بھی اچھا ہوتا ہے, کبھی کبھی لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنا بھی اچھا ہوتا ہے. پریوہن کھیتر میں نرنتر چنوتیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور چنوتیوں کا کارن کئی کارن ہیں. ایک کارن تو یہ ہے کہ گاڑیوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, ہارس پاور بڑھتا جا رہا ہے. ابھی ہارس پاور کہاں تک بڑھے گا مجھے نہیں جانکاری ہے, لیکن مجھے میرے جو متر ہیں, میں بھی ٹیکنالوجی انجینئرنگ سے میں نے شکشا پائی تھی, تو میرے جو متر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پاور لگاتار ہم اور پاورفل انجن کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہماری شکتی بھلے ہی جہاں پہ ہے وہیں رہے یا اس میں چھلن ہو, ہماری آدھیاتمک شکتی بات کر رہا ہوں, ہماری آدھیاتمک شکتی کا چھلن ستیگ سے تریتا یگ میں, دوپر یگ میں, اور اب کلیگ میں ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید چھلن ہو رہا ہے. آدھیاتمک شکتی کا چھلن اور مشینوں کی شکتی کی وردھی, یہ ایسا سنتولن پیدا کرتے ہیں جو ایک بہت بڑی چنوتی ہمارے سامنے پتن آتی ہے. اس پر ہم نے اب سڑکیں بھی ایسی بنائی ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سڑکیں ہم نہ بنائیں, ہم نے ایکسپریس وے بنائے ہیں. اور اتر پردیش میں تو مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے, اتر پردیش کو تو آج ہم جو وہاں ہماری ورتمان سرکار ہے انہوں نے اتنے اچھے ایکسپریس وے بنائے ہیں کہ اتر پردیش کو اب ہم کہتے ہیں کہ ایکسپریس وے کا پردیش ہے. اور ایکسپریس وے کا مطلب ہوتا ہے, ایکسپریس وے کی پہلے پریبھاشا تھی کہ جہاں 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار نیونتم ہو وہ ایکسپریس وے ہے. تو جب ہم مارگوں پہ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ نیونتم اسپیڈ, ویسے تو قانون میں اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ادھکتم اسپیڈ, یہاں اسپیڈ لمٹ کہتے ہیں, لیکن ایکسپریس وے کی جو دھارنا ہوئی, جو ہماری منا استھتی ہوئی, وہ سنکلپنا اس سے پیدا ہوئی کہ کم سے کم 100 کلومیٹر کی اسپیڈ ہوگی تبھی وہ ایکسپریس وے کہلائے. تو اگر ہم نے یہ من میں بھاؤ پیدا کیا کہ 100 کلومیٹر تو کم سے کم چلنا ہی ہے, تو اگر ہماری گاڑی 120 پہ چل سکتی ہے تو اس پہ بھی چلائیں گے, 140 چل جائے گی تو اس کا بھی آنند لیں گے, بھلے ہی اس کے لیے ہمیں اپنا جیون ہی کیوں نہ دینا. اس میں مجھے لگتا ہے ہم نے بہت سارے اسٹیپ لیے ہیں, بہت سارے ہم نے یہاں پریوہن وبھاگ کے ہمارے بہت سے ادھیکاری آئے ہیں, وہ سوئم ابھی اگلے 2 یا 3 دن میں 4 دن میں جب چرچائیں ہوں گی تو ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم نے کیا کیا کاروائیاں کی ہیں جس سے کہ درگھٹنائیں کم ہوں, فیٹل ایکسیڈنٹس کم ہوں, فیٹلٹی کم ہوں. اتر پردیش میں ابھی بھی کہتے بھی ہم پورے پریاس کر رہے ہیں, لیکن پرتی ورش 70,000 سے ادھک ویکتوں کی مرتیو کے روڈ ایکسیڈنٹ میں, بہت بڑی سنکھیا ہے, یہ 2020 کی ہے. پریوہن نگم میں جو ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی سنکھیا کافی ادھک ہے, لیکن مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے, کورونا کال میں تو خیر گاڑیوں کے کم چلنے سے بھی درگھٹنائیں کم ہوئی, لیکن پچھلے ورش 21-22 में अगर हम पिछले 3-4 वर्ष के आंकड़े देखें तो दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है और मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। एक्सीडेंट हमारे यहां जो 4 साल पहले 376 होते थे वो घट के पिछले वर्ष 238 हुए हैं, 37% की गिरावट हुई है। ये बहुत सारे जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से हुई है। जो मृत्यु होती है दुखद मृत्यु है, एक भी व्यक्ति की मृत्यु होना सड़क पर दुखद है, एक एक जीवन बड़ा बहुमूल्य है और मानव जीवन तो सबसे अधिक बहुमूल्य है। 3-4 साल पहले हमारे यहां करीब 484-485 लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होती थी, आज ये घटके 270 पे हम आ गए हैं। इसके बावजूद कि वाहन बढ़ रहे हैं, सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, लेकिन मैं यहां समय को देखते हुए वो सारे उपाय नहीं बताना चाहता हूं जो हम लोगों ने किए हैं। वाहनों पर भी प्रतिबंध किया है, ड्राइवरों का भी ट्रेनिंग किया है, कार्रवाइयां भी करते हैं, इन्फोर्समेंट विंग भी परिवहन विभाग में होता है वो भी इसके बारे में कार्रवाई करता है, लेकिन मन में एक बात बार बार आती है कि इतने सब योग्य व्यक्तिकारी हैं, इतने सब लोगों के बाद भी इसकी संख्या घटकर के शून्य या लगभग शून्य क्यों नहीं होती है, अभी भी हजारों जाने दुर्घटनाओं में क्यों जा रही है। इसका उत्तर तो हमें मिल गया है, आध्यात्मिकता से जोड़ना। आध्यात्मिकता में तो मैं समझता हूं जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है, जैसा कि बहन ने भी कहा, और आध्यात्मिकता के लिए हमें कोई बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़ा अध्ययन, बहुत बड़ा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सालों तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अगर ये मानते हैं कि एक परमपिता की हम संतान हैं, हम सभी भाई बहन हैं, एक परिवार के अंग हैं, अगर इतना भी ज्ञान हमें हो जाता है तो मैं समझता हूं कि 90% आध्यात्मिकता हासिल हो गई। आप इतना मानिए कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, इसका प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का अंग है, और माना भी क्यों, मैं तो कहता हूं प्रभु के बनाए हुए प्रत्येक जीव हमारे परिवार के अंग है। जब ये भावना आपके मन में आएगी आप देखेंगे कि इससे बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। हमारे परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश में कई साल पहले की बात है, एक चालक हुआ करते थे श्री रमेश अरोड़ा जी, उनकी गाड़ी में अक्सर एक्सीडेंट होता था, वो जब भी आते थे कहीं ना कहीं गाड़ी लड़ा के आते थे और बड़ी तेज गाड़ी चलाते थे। गाड़ी तेज तो बहुत से चालक चलाते हैं, यहां परिवहन विभाग के हमारे अधिकारी बैठे हैं, उसकी भी वजह है। जैसे स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि तेज चलना अच्छा है, वैसे ही हमारे परिवहन निगम में, परिवहन निगमों में पूरे देश में ये सभी ड्राइवरों को बताया जाता है कि पर डे बस किलोमीटर जिसके सबसे ज्यादा हो वही सबसे कामयाब ड्राइवर है। तो अगर आपने 350 किलोमीटर का एवरेज किया तो आप अच्छे ड्राइवर हैं, आपने 400 किलोमीटर एक दिन में चलाया तो आप और अच्छे हैं, और 500 चलाया तो आप पता नहीं कितने अच्छे हैं। तो अगर हम केवल अपने चालकों की, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका अगर मानक केवल ये बताएं कि कितनी ज्यादा बस चली, और देखिए बस चलाने में घंटे तो उतने ही आपके पास है, तो घंटे उतने ही हैं, तो ज्यादा तो तब चलेगी जब आप तेज चलाएंगे, तो अधिक तेज चलाना ही केवल अगर एकमात्र उसकी परफॉर्मेंस का पैमाना होगा तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना आएगी कि मुझे तो ये एवरेज देना है। इसके साथ हमने जोड़ा है कि ये परफॉर्मेंस तभी अच्छी मानी जाएगी जब आपकी दुर्घटनाओं के बारे में आपका शून्य का रिकॉर्ड हो, वरना अधिक तेज गाड़ी चलाने का, अधिक एवरेज देने का कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो दुर्घटना में और वो मृत्यु करके आप 500 किलोमीटर एक का एवरेज लाएं, उससे मैं बेहतर कहूंगा आप 300 किलोमीटर का एवरेज लाएं लेकिन कोई मृत्यु ना हो, ये भावना हमारे मन में होनी आवश्यक है। मैं रमेश अरोड़ा जी की बात बता रहा था, वो अक्सर दंडित होते थे और हम लोग समझते हैं सरकारी सेवा में जो हम लोग हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हर चीज का इलाज दंड देना है। मुझे 37 वर्ष हो गया है सेवा में और मुझे कई वर्षों पहले यह एहसास हो गया कि दंड देने से स्थायी सुधार कभी नहीं होता है। जब तक व्यक्ति के मन में उसकी मन में भावना ना हो, जब तक वो कन्विंस ना हो कि जो बात आप कह रहे हैं वो उसके हित में भी है, उसके परिवार के हित में भी है और समाज और देश के हित में है, जब तक वो स्वयं अपने मन में अपनी आत्मा में इस बात को ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसमें सुधार संभव नहीं है। तो श्री रमेश अरोड़ा जी को दंड स्वरूप, जब चूंकि एक्सीडेंट बहुत करते थे तो वो लखनऊ में तैनात थे, उन्हें वहां से 600 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में तैनात कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप वहीं जाइए, वहीं चलाइए गाड़ी। ऋषिकेश में उनका संपर्क कुछ साधु संतों से, सज्जनों से हुआ, जैसे हम लोगों का संपर्क आज यहां अपनी बहनों से हुआ है, भाइयों से हुआ है। और उनके संपर्क में आने के बाद उनके अंदर जो आध्यात्मिकता का दीप चला तो उन्होंने इतना अपने आप को परिवर्तित किया कि फिर वो अकेले 650 किलोमीटर लंबी यात्रा ऋषिकेश से लखनऊ तक वो बस लेके स्वयं आते थे, अगले दिन स्वयं लेके जाते थे और उनका रिकॉर्ड ये हुआ कि उनकी कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और फिर वो दूसरे लोगों को बताने लगे कि कैसे, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहां जब लंबी दूरी की बसें चलती हैं तो उसमें दो ड्राइवर हम लोग भेजते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं कहीं वो लंबी दूरी से दुर्घटना ना हो, लेकिन उसको हमने एक सबसे अधिक दुर्घटना करने वाले चालक से हमने उसको एक दुर्घटना बचाने वाला शिक्षक, बचाने वाला गुरु बना दिया जो और लोगों को बताता है कि कैसे दुर्घटनाएं बचाइए। हमें प्रत्येक, देखिए पद से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारा जो सबसे छोटा कर्मचारी है वो भी परमपिता का, वो भी उसकी संतान है और अगर उसको भी, उसकी भी जागृति हो जाए, शक्ति तो उसके अंदर पहले से ही है क्योंकि वो परमपिता का पुत्र है, पुत्री है, अगर उससे जागरण इस बात का हो जाए कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, सही सोच उसके अंदर आ जाए तो वो सबसे छोटा कर्मचारी भी हमारा गुरु हो सकता है, हमारी पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम सबको एक ऐसे पवित्र स्थान में आने का अवसर मिला है जहां हम सब एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बैठ करके ये बता सकते हैं कि हम सब कितने सकारात्मक हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारी, इसको हम एहसास कर लें, इसका रियलाइजेशन कर लें तो हम गति पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, जो गति जहां आवश्यक हो उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई गति ऐसी नहीं है कि सर्वमान्य कोई नियम हो कि यही गति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जहां जो गति उचित है, उपयुक्त है, वो गति हम धारण करें। उन भाइयों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं जिन्हें गति से बहुत आनंद आता है, कुछ लोग इसलिए तेज चलाते हैं कि उन्हें थ्रिल आता है, अगर थ्रिल लेना है तो 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में क्यों थ्रिल लेते हो, अगर थ्रिल लेना है तो ये सोच के लीजिए कि आप पृथ्वी पर बैठे हैं, सबसे जो बड़ा वाहन जिसमें आप बैठे हैं वो पृथ्वी है और पृथ्वी की रफ्तार अगर आपको मालूम हो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलती है, तो थ्रिल लेना है तो इस बात को सोच के थ्रिल लीजिए कि आप तो 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यात्रा कर इस वाहन में बैठे हुए हैं जो प्रभु ने दिया हुआ है, उसमें बैठ करके उस पृथ्वी माता की गति को लेकर के खेल लीजिए, ताकि सड़क पर तो ये सोचिए आप अपने को प्यार करिए, अपने परिवार को करिए, अगर वो करेंगे आप तो दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी, आपके अंदर आध्यात्मिकता स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। शांति और प्रेम ही आध्यात्मिकता को जगाने के रास्ते हैं। जय हिंद।
आप सभी बैठे रहेंगे, आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी आ रही है। हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका हम सभी के बीच कुछ ही समय में उपस्थित होंगे, इसे कोई भी बाहर न जाएंगी। बहुत अच्छी बात है कि दादी जी हम सभी के बीच आ रही हैं। भाई साहब ने, आरके तिवारी जी ने बहुत अच्छे अपने विचारों को रखा, और मेन बात तो यह थी कि एक्सीडेंट मुक्त भारत बने। इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे भारत देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि भारत एक्सीडेंट मुक्त, जीरो एक्सीडेंट। हमारी दीदियों ने तो बताया कि जीरो एक्सीडेंट हमारे सत्युग में था, लेकिन उन संस्कारों को, उन आदतों को, उन भावों को लाने के लिए प्रयास हमें यहाँ ही करना होगा। यहाँ करते करते ही वह दुनिया आएगी जब एक्सीडेंट मुक्त भारत होगा। तो बहुत सुंदर विचार हमारे भाई जी ने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। गति ही जीवन है, जहाँ गति होगी वहाँ परिवर्तन होगा। मन वाणी कर्म में एक ही सोच और व्यवहार होने पर सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, हर कार्य में उन्नति होती है। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता आरसी रतन, चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी दिल्ली से हैं। आपके भी बायोडाटा को देखते हुए हमें लग रहा है कि बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एक बातें आपके रखेंगे कि आप एमए राष्ट्रशास्त्र समाजशास्त्र एएमसी एलएलबी हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आपने 45 वर्ष कार्य किया। वर्तमान में भारत सरकार का दायित्व चेयरमैन पीएससी रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भारत सरकार, स्थायी मेंबर एनएफसीएच गृह मंत्रालय भारत सरकार। अवार्ड भी आपने कई प्राप्त किए हैं, वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड बैंकॉक से, भिन्न भिन्न संगठन के द्वारा समय प्रति समय अनेक अवार्ड द्वारा सम्मानित होने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने शुभ विचार हम सभी के समक्ष रखें।
सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस 22वें राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट कार्यक्रम में सम्मानित हमारा मंच और सम्मानित हमारे बहन और भाइयों के बीच में सबसे पहले उच्चारण जो शब्द मुझे पहले बोलना चाहिए था, ओम शांति, ओम शांति। आज मेरा ये दूसरा शुभ अवसर है। मैं इससे पहले भी चेयरमैन था, हॉल काफी बड़ा वाला था, जिसमें भी मुख्य अतिथि का अवसर मुझे शुभ अवसर बहनों और भाइयों द्वारा प्राप्त हुआ। विषय भी यही था, गति सुरक्षा और आध्यात्मिकता। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता, जहां उसका अलग अलग, उसके स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन पूरक भी एक दूसरे से हैं। और पूरक अगर हैं तो हमको मानव जीवन की श्रृंखला, मैं अभी सोचता हूं कि आज मेरा इस कार्यक्रम में दूसरी बार नहीं, भारत के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी भाई और बहनों के उस स्वधर्म स्वरूप को, ऐसा धर्म, ऐसी आध्यात्मिकता जो अपने को सिखाता हो ओम शांति के प्रवचन से, स्वयं को स्वधर्म के स्वरूप में ढाले और सामने से उसका उद्बोधन संबोधन भी ओम शांति के रूप में आए, ऐसे परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने अविभाजित भारत के स्वरूप को 1936 में हैदराबाद के, और क्योंकि मैं बहुत अरसे से शायद मैंने हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां मैं ओम शांति बहनों भाइयों के बीच में न गया हूं, और मैंने ये पाया कि सही तरीके से गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता, ये ट्रांसपोर्ट बिंग, मैं इन बहन और भाइयों का बहुत ही अभिवादन वंदन करता हूं कि किस विषय को, मानव जीवन की श्रृंखला को कहां से सजो करके लाए हैं, क्या स्वरूप है। हम लोग कई बार घरों में हृदय गति रुक जाती है तो हार्ट पल्स सोच करके उसकी गति को नापने लगते हैं कि गति धीमी पड़ गई है, गति तेज हो गई है। ये मानव जीवन की श्रृंखला को यातायात के यंत्र से जोड़ करके ये विषय रखा है। क्या यंत्र है यातायात का, असली जो यात्रा का यंत्र जो है वो यात्रा के यातायात का स्वरूप संजोता है। क्या यात्रा का यंत्र ये मानव जीवन का शरीर भी है, मानव जीवन विश्व की प्रत्येक चीज पर अंकुश करता है, चाहे वो परिवहन के रूप में, सम्मान्य तुम्हारे तिवारी जी बता रहे थे भारतीय रेल की गति को, मैं भी बताऊं, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, बेसिस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं, मेरी 43 साल की वकालत भी है, एक हम कभी भी दस्तावेज लिखने जाते हैं और उस दस्तावेज में चाहे तो सेल डीड हो, चाहे किसकी वसीयत लिखी जाए, तो एक शब्द हमारे यहां कानूनन लिखा जाता है, मन इंद्रिय स्वस्थ बुद्धि की दशा में, मन इंद्रिय स्वस्थ बुद्धि की दशा में जो भी मैं लिख रहा हूं वो सत्य लिख रहा हूं, सत्य के अलावा मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। इट मीन्स जब तक आपका मन का विचरण, मन की विकृति, मन की आकृति का सजोने का, उसकी कंट्रोलिंग पावर आपके पास नहीं होगी, तो इन तीनों गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं होगा। और ये जो स्वधर्म की परिकल्पना मैं देखता हूं इन बहन और भाइयों में, उन परमपिता परमेश्वर को भी मैं, बाबा श्री को अभिवादन करता हूं, मैं कोट कोट नमन और वंदन भी करता हूं, क्या उन्होंने 137 कंट्री में 8500 शाखाएं, ये चूंकि एडवोकेट से चूंकि मैंने पत पत्नी के मुकदमे बहुत लड़े हैं, घर की अशांति मन के विचलन को बढ़ाती है, और घर की अशांति जब मन के विचलन को बढ़ाती है तो अदालत और थाने की गति भी बढ़ जाती है, न्याय की पराकाष्ठा अन्याय में बदल जाती है। लेकिन जब मैं यहां आकर के बहनों के स्वरूप को देखता हूं और किचन में देखता हूं, कार्यक्रम में देखता हूं, मनोभाव के स्वरूप को देखता हूं, बोलने की भाषा को देखता हूं, चलने के तरीके को देखता हूं, भाईचारे के व्यवहार के जीवन को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि असली आध्यात्मिकता स्वरूप तो यहां पैदा होता है। और ऐसे भाव को, ऐसे भाव को विषय भी बड़ा स्पेशल रखा है, विषय भी स्पेशल रखा है। क्या विषय रखा है, क्या हम दो पहिए की बात, क्या हम चार पहिए की बात, क्या हम देशाटन रेल की बात, रेल भी लाइफ लाइन ऑफ द नेशन कही जाती है, देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम कही जाती है, और देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भारतीय रेल है जिसे 2.5 करोड़ आदमी प्रतिदिन रेल से यात्रा करता है, और उस यात्रा में मेरे जैसे व्यक्ति को कोई केंद्रीय मंत्री को, रेल मंत्री को आज तक के 38 साल में कोई रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे को पुनः बना करके आपके बीच में पुनः भेजा है। कैंटीन कैंटीन बुक स्टॉल वेंडर्स हकर सेफ्टी सिक्योरिटी साउंड एंड मॉडिफिकेशन, ये सबसे बड़ा मेरा दायित्व भारतीय रेल में। मैं क्या टीवी देखता हूं और सुरक्षा टीवी में जाकर के मैं सीसीटीवी भी चेक करता हूं। अभी हैदराबाद मैं देख रहा था सीसीटीवी, तो पता चला कि ट्रैक के बीच में एक महिला ट्रेन में चढ़ रही थी और ट्रैक और रेल के बीच में बच्चा गोद से गिर गया और फट से एक फीमेल कांस्टेबल ने चढ़ से उसे पिक किया और उठाकर, अरे ये कौन है कौन है कौन है, पता चला कि ये तो फीमेल कांस्टेबल है और बच्चे को इसने मरने से बचा दिया, तो वो बड़ा वायरल हुआ देश में। मैंने कि 5000 इसको अवार्ड घोषित करो, मैं दे रहा हूं। आज मैं भारतीय रेल में गति की बात चल रही, वंदे भारत ट्रेन चली है, मैंने वंदे भारत ट्रेन का, मैंने जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नया विकसित देश, श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश कैसे बनेगा, लेकिन देश तो बनने के साथ साथ बनाने वाले कौन होंगे, क्या बनाने वाले मानव शरीर को सोचा है, क्या मानव जीवन के उस संतुलन को बनाने का काम भी किसी ने किया है। सबसे पहले हमको उसको बनाना पड़ेगा, चाहे हम रेल चलाएं, चाहे हम टू व्हीलर चलाएं, चाहे हम फोर व्हीलर चलाएं, चाहे हम परिवार की उस तंत्र की यात्रा को चलाएं, लेकिन जब तक मन इंद्रिय स्वस्थ बुद्धि की दशा में, मन की विकृति, इंद्रियों का संतुलन, सोच का व्यवहार का स्वरूप जब तक आपके जीवन में नहीं ढलेगा, और मैं तो अब पुनः कहता हूं, मैं सैल्यूट भी लगाता हूं ऐसे बहन भाइयों को जिन्होंने पूरे विश्व में एक पताका फहराई और कहां से ढाल करके लाए हो कि यातायात यात्रा के तंत्र को, मानव के शरीर के मंत्र को जोड़ करके चलने वाले भाव को और भाव की व्यथा की सोच की गाथा को इस मंच से सजो करके एक विश्व का स्वरूप देने लगे हैं। मैं पुनः ये कहते हुए कि हमको मेडिटेशन रेल के भी बहुत अधिकारी कर्मचारी बैठे, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं अभी वंदे भारत ट्रेन से चल रहा था, तो मैंने ड्राइवर से पूछा क्या लगता है क्या फीचर्स चेंज हुए हैं, बोले बहुत कुछ चेंज हुआ है, गति चेंज हुई है, बोले हो गई है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके मन की भी गति कुछ स्थिर हुई है कि नहीं, मन की गति भी आपकी उस गति से प्रतिबंधित हुई है या नहीं हुई है, उस गति में ढालने की भी मानव जीवन की जब तक श्रृंखला को नहीं हुआ होता तो आज बाबा श्री को भी देश और विश्व नतमस्तक नहीं किया होता। सबसे पहले तो मन इंद्रिय स्वस्थ बुद्धि की दशा में उन बाबा श्री मैं दादा लेखराज जी को इस मौके पर भूलना नहीं चाहिए, करोड़ों बहन और भाइयों को, इनके मन को विचरण को, सबसे पहले अपने भाव को, परिवार की सोच को, भाईचारे के भाव को। धर्म असली वो है जो अधर्म को मिटाए, धर्म वो है जो असुरक्षा को सुरक्षा में बदले। ऐसी भावना के लिए आज इस मौके पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बहन और भाइयों ने बुलाया है, लेकिन मैंने अभी माउंट आबू के पटौदी, अभी पिछली बार भी स्टेशन पर गया, मेरे अधिकारी भी रेल अधिकारी भी आए हैं, अभी पटौदी भी गया, मैंने इनके लिए अलग से बहनों के लिए एक, बहन और भाइयों के लिए ब्रह्म कुमारी के लिए क्या एक कोई संस्था है आजादी का अमृत महोत्सव बहन मना रही है। कल पत्रों पर्यावरण दिवस के लिए, स्वास्थ्य के सोच के लिए संस्थाएं चलती हैं, चलाते हैं, धन अर्जित करने के लिए बनाते हैं, अर्जित किया चले जाते हैं, लेकिन ये मन को अर्जित करके उनको सुयोजित करने का ये कैसा स्वरूप ये मंच सजाता है। ऐसे मंच के लिए मेडिटेशन राजयोग, मुझसे कोई कहने लगा कि राजयोग का मतलब क्या है, सत्तायोग, हमने कहा राजयोग का मतलब है अपने मन के विकारों को मेडिटेशन के माध्यम से परम पिता के आत्मा के स्वरूप को परमात्मा की लगन से जोड़ करके देखो और जोड़ करके देखेंगे तो आपको अपने में स्वयं महसूस होगा कि राजयोग की परिभाषा क्या है, क्या परिधि है। इसीलिए तो मन के विकारों को दूर करने के लिए ये बहनों भाई ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं, और ऐसे विषयों के लिए मैंने, चूंकि मैं जैसा कहा कि पूरे भारत के पूरे, अभी मैंने 300 स्टेशन भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अभी मैं टर्मिनल बनिहाल, मेरे मेंबर्स लोग बैठे हैं, मैं उस टर्मिनल में घुसा तो मैंने क्या पूछा, मैंने कहा बताइए ना इस टर्मिनल में घुस करके आपकी मन की विकृति क्या, आपका कंपन होता है, बोले नहीं होता, प्रोजेक्ट दिखाओ ना। तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करके लगा तो वो कहने लगे लगता है साहब आप वो एडवोकेट के साथ साथ टेक्निकल भी हो क्या। हमने कहा मैं सीखने का भाव रखता हूं, जिस व्यक्ति में सीखने का भाव होगा वो सिखा भी सकता है, जिसमें परंपरा सीखने की खत्म हो जाएगी वो कभी जीवन में सिखा नहीं सकता। ये ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रतिफल सिखाता है, नए नए आयामों को लेकर के आता है। और इसलिए मैं आज ये कहते हुए कि मुझको भारत सरकार ने चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी बनाया, मेरा 47-48 साल का राजनीतिक जीवन है और मैं कार्यान्वित होकर के आज भी देश के जस काम दस काम उस सारी चीज पर भाषाओं को। अयोध्या गया तो मैंने कहा अयोध्या ये नाम कैसे पड़ा, अरे साहब विश्व प्रतीक भगवान राम दिखने भी तो चाहिए, कहां पोर्ट्रेट दिखाओ ना। मैं जब पटना साहब में गया मैंने क्यों नाम पढ़ा, बोले सरदार गुरु गोविंद सिंह मैं दिखने भी तो चाहिए, मैं मोदी जी का इतना सत्यपाई हूं। आज मैं उम्र भी तिवारी जी आश्चर्य होगा, मैं बात समाप्त करते हुए मैं 70 वर्ष का बूढ़ा हूं लेकिन पूरे तहलका मचा रखा है मैंने। 24 घंटे में 1.5-2-3-4 घंटे ही सोता हूं लेकिन ये सब मेरी 24 सदस्यों की टीम है और रेलवे अधिकारी और कर्मचारी और सब लोगों के साथ बहन भाइयों के साथ कुछ अच्छा कर पाऊं इसी उम्मीद के साथ हम सब लोग इस गति सुरक्षा आध्यात्मिकता को पूरक बना करके अपने मन के भाव को सही कर लें, मन के विचलन को दूर कर लें, मन की विकृति को दूर कर लें, देश श्रेष्ठ बनेगा शक्तिशाली बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।
धन्यवाद भ्राता जी का। और अब हम सबके बीच आदरणीय दादी जी पहुंच चुकी हैं, हम सभी खड़े होकर के दादी जी के सम्मान में एक मिनट के लिए हम सभी खड़े हो जाएं और दादी जी का एक हाथ हिला करके अभिवादन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत दादी जी आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मैं बहनों से कहूंगी कि पुष्पगुच्छ और बैठ के द्वारा दादी जी का भी अभिनंदन करें, अभिवादन करें। दादी मेरे से बैठ पे बैठ पे बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका 1936 से लेकर के आपने अपनी जीवन इस विश्वविद्यालय में समर्पित की है। आप 12 वर्ष की आयु की थी तभी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने आपका एक अलौकिक नाम दिया रतनमय ने, जिसे हम रतनमय दादी जी के नाम से जानते हैं। और साथ साथ आप हमारी युवा प्रभा की चेयरपर्सन भी हैं। आप भी सबसे पहले 1954 में जब जापान से निमंत्रण मिला था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, तो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के साथ दादी रतनमणि जी को भी भेजा था और दादा आनंद किशोर को भेजा था। ये तीनों ही ईश्वरीय परिचय देने के लिए पहली कॉन्फ्रेंस जापान में 1954 में गए। उसके बाद तो आपने कई स्थानों पर देश और विदेश में ईश्वरीय संदेश देने के लिए आपने भ्रमण किया है। दादी जी भले हम सभी के बीच उपस्थित हैं, आप जानते हैं कि वर्तमान समय अब दादी जी 98 ईयर्स की हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी उम्र की दादी जी जो हम सबके बीच, हम कितने छोटे हैं उनके बीच भी हमारे बीच पधारी हैं। लेकिन दादी जी से सिर्फ हम ये अनुरोध करेंगे भले दादी जी हमें नैनों के द्वारा, नजर के द्वारा, दादी जी अपने भावों के द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे, हमें खाली मिलने हेतु, दो मिनट मिलने हेतु दादी जी पधारे हैं, यह भी कोई कम बात नहीं है। यही होती है माँ की ममता, कहते ना कि माँ की ममता ऐसी है बच्चा कुछ भी हो समय के आगे पीछे, लेकिन माँ उस बच्चों की ममता को समझती है। ऐसे ही दादी जी ने भी हमारी भावनाओं को समझा और दादी जी अपनी ममता मूर्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दादी जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे भाई बहन हैं भारत के कई स्थानों से यहाँ पर पधारे हैं, जो आज की कॉन्फ्रेंस है गति सुरक्षा और आध्यात्मिकता। दादी जी वो गाड़ियाँ तो चलाते हैं, उन गाड़ियों की गति किस प्रकार को, सुरक्षा क्या हो, उसका तो ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मन की गति क्या होनी चाहिए, मन के द्वारा हम अपनी सुरक्षा और अन्य की सुरक्षा किस प्रकार से करें, उसमें आध्यात्मिकता वो क्या पार्ट प्ले करती है। तो आज हमारे भाई बहनों ने ये सुना है कि सबसे बड़ी बात जो हमारे नेगेटिव विचार हैं उनको हम परिवर्तन करके सकारात्मक विचारों को करेंगे, वो जीवन यात्रा कर हमारी सफल करने के लिए, जैसे वहाँ गाड़ियों में यात्रा कराते समय कहते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो सफल हो, ऐसे ही जीवन की यात्रा भी हमारी मंगलमय हो, हमारी जीवन की यात्रा भी सुखद हो सरल हो, उस बात को हम आध्यात्मिकता के द्वारा किस प्रकार से करें वह जानने के लिए समझने के लिए आपकी वरदानी दृष्टि को लेने के लिए, जिस वरदानी दृष्टि से हमारी कृति हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ जाए, इसलिए आप सब हमारे बीच में पधारे हैं दादी जी, आप जरूर आपकी दृष्टि से इन्हें लाभान्वित करेंगे। हमारे बीच दादी जी पहुँचे हैं तो हमारे मन के अंदर एक और विचार भी आता है, हमारे आदरणीय बहनों को और भाइयों को भी विचार आया, हम सभी ने शुभ संकल्पों का दीप जलाया, क्यों नहीं कहा जाता ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, और इस जग से जो अंधियारा है विकारों का अंधियारा है उस विकारों के अंधियारे को हटा करके पुनः भारत देश के अंदर एक निर्विकारी जीवन पवित्र जीवन का पवित्रता की वाइब्रेशन का हम वह दीप जलाएंगे। पुनः मैं चाहूंगी कि दादी जी के समक्ष वह दीप रखा जाए और वह दीप रख करके दादी उस ज्योत को जलाएं जिससे सारे जग के अंदर से वह अंधियारा मिट जाए, इस विश्व में पुनः प्रकाश ही प्रकाश हो, इसलिए कहा जाता तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो चलिए पुनः एक बार खड़े होकर के दादी जी के साथ हम सभी दीप प्रज्वलित करते मन के अंधकार को, मन के विकारों को, मन के नेगेटिव थॉट्स को दूर करने का हम एक सुंदर दीप प्रज्वलित करें।
संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए की है ये बेला। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
दादी जी ने सुबह कहा था कि मैं कोशिश करूंगी। मैं जब सुबह मिलने गई तो इस प्रकार से बात कर रहे थे, कोशिश करूंगी, लेकिन दादी जी बिल्कुल जो बात कही उस वचन को पूर्ण पालन किया। मैं ये देख रही हूं कि दादी जी ने वचन दिया और पालन किया, क्या इससे हमें प्रेरणा नहीं मिलती है? इस बात से हम सभी को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कईयों को वचन देते हैं, लेकिन वचन देने के बाद हम पालन कितना करते हैं। तो आज की दादी जी से प्रेरणा हम सभी लेंगे, जो दादी ने अपनी दृष्टि के द्वारा प्रैक्टिकल में उपस्थित रख करके दिया कि हम भी अगर किसी को वचन दें तो जीवन के अंदर उसका पालन अवश्य करें। ऐसे ही परमात्मा के हर श्रीमत का पालन करने वाले, सदैव परोपकार की भावनाओं को रखने वाले, सद्व्यवहारी, जीवन के मूल्यों का मूल्य समझकर उसे आचरण में लाना, ऐसे श्रेष्ठ विचारों के धनी हमारे बीच उपस्थित हैं प्रातः करुणा भाई जी, चीफ मल्टीमीडिया के धनी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी मीडिया की बातें आप देख रहे हैं, चाहे हम वीडियो के द्वारा देखते हैं, कैमराओं के द्वारा देखते हैं, टीवी चैनलों के द्वारा देखते हैं, टोटल आईटी से संबंधित सभी बातों को सर्व स्थानों पर आपने बहुत रीति से सुचारू रूप से यहाँ पर प्रबंध किया ताकि घर बैठे भी हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता करुणा भाई जी, आपने भी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। 1960 में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके पिता श्री ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती की आपने खूब पालना ली है और इसी आधार से आपने कई स्थानों पर भ्रमण करके इसी ईश्वरीय ज्ञान को भी फैलाया है। साथ साथ मैं ये कहूंगी आपका एक सुंदर सा यंत्र और मंत्र जो आपको जीवन के अंदर सफलताओं को प्राप्त कराता आया, जो मैं इनके मुख से हमेशा सुनती रहती हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के साथ मधुर संबंधों के धनी प्रातः करुणा भाई जी से निवेदन है कि आज के सम्मेलन में अपने उद्बोधन को हम सभी के समक्ष रखें। प्रातः करुणा भाई,
सत्यम शिवम सुंदरम, गति की बात आप सब सुना रहे थे। हमारे दादी जी आए, सबने अनुभव किया होगा कि भाई शांति भी कुछ ہوتی ہے. گتی میں شانتی کہاں آتی ہے؟ تو ہم سب کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے اور گھروں میں گھڑی لگاتے ہیں تو وہ ہر سیکنڈ، منٹ، آورز اور دن کا فکس ہے. تو ایک دن کا جو سپیڈ ہے وہ فکس ہے اور ہم وہی دن کو گنتے ہوئے ہم اتنے سمے سے اتنا یہ کاریہ ہے یہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پرجاپتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالے میں پہلا پاٹھ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ یہ جو سمے ہے اس سمے کے ساتھ ہمارا کچھ سمنوے ہو جائے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سب بہنیں شانت ہے اور ان کا چلنا ملنا سب چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سپیڈ نہیں ہے، شانتی سے سب ہو رہا ہے. تو اب آپ تین چار دن میں بھی یہاں دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے، اپنا پریوار میں، جوائنٹ فیملی میں ہو سکتا ہے 10-15 لوگ بھی ہو گھر میں، پرنتو یہاں ایسا بھی سمے تھا 20-25 ہزار لوگ یہاں ہمارے چھوٹا سا پریوار رہتے تھے. کورونا کے بعد تھوڑا کم ہوا ہے، آج بھی 3 کانفرنسز چل رہا ہے یہاں، پر آپ دیکھیں گے سب اپنے سمے پر بھوجن کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے اور وہی 24 گھنٹے کی دن ہے. تو آپ ان 4 دنوں میں بھی تھوڑا سا کس طرح سے ہم لوگ اپنا جیون بتاتے ہیں، تو اسی لیے آپ سب کو ایک ہی پرکار کے جو سیوا کر رہے ہیں تو سب کو ایکترت کیے ہیں کہ تیزی سے چلنے کی. تو یہاں اپنے جیون میں کس طرح سے ہم لوگ شانتی سے رہ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی کر کے آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں. دوسری بات، ویسے جو کہتے ہیں اتنا لوگ تیورتا سے مرے روڈ ایکسیڈنٹ سے یا کسی بھی طرح سے، میں جب یہاں پہلی بار آیا 1960 میں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ تو مرنے والے نہیں ہو. میں نے کہا ایسا کیسا، جو جنم دیتا ہے وہ تو مرتا ہی ہے، پرنتو جو پہلا لیسن جو آپ جو کل آئے ہیں وہ آج انہوں نے سنا ہوگا، نہیں تو آپ کل بھی آپ کو صبح کا سمے ایسا لیسن ملے گا جو آپ ابھی تک کے ایکسیڈنٹ اور یہ سب سن رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ گاڑی جو سب سے امپورٹنٹ، تو اس کو ہم چلاتے ہیں تو چلانے والا کار چینج کر رہے گا پرنتو آپ سدائی ہے، تو اس کو آدھیاتمک کہتے ہیں. سرل بھاشا میں یہاں آپ کو سب بتاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پرکار آتما اپنی باڈی کو کیسے چلاتے ہیں. تو یہاں سب ہم سنے بات کیے سب کچھ ٹھیک ہے، پر جیسے ہی گھر سے نکلے کار میں بیٹھے ڈرائیور کو کہتے جلدی چلو، تو بات وہی ہوئی کہ بھائی جلدی کیوں چلے، کیونکہ ٹائم کم ہے، ٹائم پر پہنچنا ہے. تو پھر کیوں نہیں اس ٹائم انوسار ہم لوگ اپنے آپ کو सेट करे तो वो आप इन चार दिनों में आप सीखेंगे। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि हमारे पास तो अलग अलग प्रोफेशनल वालों को अलग अलग बुलाते हैं, क्योंकि हर प्रोफेशन में अपने हिसाब से फास्ट है, समय 24 घंटा है, परंतु इतने व्यस्त है सब, सब अपने लिए समय कैसे निकालना वो भी किसी को नहीं आता है। परंतु यहां आप इन चार दिनों में कुछ ऐसे समय भी है जो मोस्ट वैल्यूएबल है, तो वो आप अपने लिए, उस समय पर आपका कोई कारोबार नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, वो आपका पर्सनल है वो, तो उस समय का भी आपको यहां मालूम होगा। कई ऐसी बातें हैं जो आप भी अपने इस अमूल्य जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, जैसे हमारे बहनों को आप देख रहे हैं सदा मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, तो खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ और करने से आप ये देख लीजिए कैसे ये लोग खुश रहते हैं। इसलिए ये चार दिन में आप ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, और जो ये समय जो यहां दिया गया है उस समय का सदुपयोग हम कैसे करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चार बातों के लिए मशहूर है। पहला, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर एक साधन है, उसको हम चलाते हैं। दूसरा, सब कुछ ठीक चल रहा है, हर रोज नई रोज मिल रहे हैं, तो इसका भी तो कोई होगा, तो हम तो जो कार्य हमको दिया गया है हम अपना पार्ट बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे हम सारी सृष्टि चला रहे हैं, तो इसका भी तो कोई होगा जिसको परमात्मा ईश्वर कहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको ऐसे ही आपको अनुभव होगा कि जैसे हमारे माँ बाप बच्चे है रिलेशन, इसी प्रकार वो ईश्वर भी हमारा ही है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, तो वो भी देख रहा है, उनको भी हम सब की चिंता है, तो हमारे बहनों को वो चिंता है कि जिस दिन आपको वो ईश्वर का अनुभव होगा तो वो आनंद कुछ और है। तीसरा, ईश्वर ने कुछ पहले से ही दिया है, जैसे माँ बाप बच्चे आने से पहले ही तैयारी करते हैं, ऐसे ईश्वर ने हम सबको पांच तत्व दिए हैं, प्रकृति, उसके बारे में कोई समझाते नहीं है, कोई मुफ्त में है, पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रहा है, सब कुछ है, उसके बारे में कोई नहीं सोचते। जब वो थोड़ा सा अभी अपसेट हो गया है प्रकृति, तो तब सोच रहे हैं अरे ये प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको क्या करना है। तो जहां अपना घर में रोज सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसी प्रकार इस सृष्टि को भी, प्रकृति को भी थोड़ा सा हमको अच्छा कैसे करें, तो ताकि प्रकृति भी हमको सुख दे, तो सुख दो तो सुख मिले। तो ये, और लास्ट में ये जो समय मैंने बताया 24 घंटे का दिन है, तो इसी प्रकार ये सृष्टि भी अपना, जैसे आप मकान तो नया ही बनाते हैं पर कुछ समय के बाद वो भी तो पुराना होता है, तो हम जो यहां जी रहे हैं हम इस प्रकृति को रहने जैसा नहीं रहने दे तो फिर वो भी अपना परिवर्तन करना जानता है। जैसे बहन जी ने एक बात बताई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो नदी अपने आप सागर पे पहुंच जाता है, उसको मालूम है, बड़ी बात है, तो इसी प्रकार प्रकृति भी अपना जानता है कैसे करना है। तो इस सृष्टि के परिवर्तन का भी कुछ समय है, जिसकी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में ये सिखाया गया है, अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना आदि आदि सब शास्त्रों में, सब इसमें है। पर वो भी समय से होगा ये कोई नहीं बताता है। तो हमारी बहनें हमको बता रहे हैं कि यही समय है, तो अपने ही कर्म से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो ये भी सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाएगा। पर पहले हम कैसे ठीक हो, किस प्रकार वसुदेव कुटुम्बकम, सर्व जने सुखिनो भवंतु, सर्व के भला, सारा विश्व का परिवार कैसे समझ कर चले। आज हमारी संस्था है, इतने देशों में है, करीब 20-21 लाख परिवार है जो रोज इस प्रकार अभ्यास कर रहे हैं। तो ईश्वर ने आपका पुण्य कर्म का फल के स्वरूप में आज आप यहाँ पहुंचे हैं। बहुत लोग सोचते हैं हम आना है पर नहीं आ पाते हैं, पर आज आप सभी आए हैं, तो आपका हमारे ही परिवार के आप है, हमारा पिता परमात्मा के ही आप बच्चे हैं, तो आप महान भाग्यशाली है। आप भी अपनी जीवन का एक बहुत सरल, सिंपल, ये चार दिन में कई बातें ले जाएंगे और आपके जीवन में वो प्रभावित करेगा। हमारी बहनें आपको गाइड करेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना दो शब्द।
भाई जी ने बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी हैं। सार रूप में अगर भाई जी की बात कहूं तो उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक बातों को जानना, समझना और आचरण में लाना, ये तीन शब्द अगर हमने ध्यान में रखे तो ये आध्यात्मिक बातों को हम जाने, समझे और आचरण में लाएं। अब इसी के लिए ही आवश्यक है, हम आए इसीलिए हैं